ओम शांति। सभी बोलो ओम शांति। आज हम सभी क्लास का विषय आज खास मिला है, संगम युग की विशेषता। तो संगम युग की विशेषता क्या है, इस पर हम सभी आज के क्लास में चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे। हम सभी बच्चे संगम युग की विशेषता जानते हैं, जानते सभी, तभी तो हम बाबा के बच्चे बने हैं। हमें हर प्रकार की समझ ये संगम युग में मिलती है। संगम युग की सबसे बड़ी विशेषता, संगम युग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन। संगम देखो, पूरे कल्प के अंदर हर युग के बीच में संगम है। हर कल्प युग के अंदर, सतयुग त्रेता के अंदर भी संगम है, त्रेता युग और द्वापर युग के बीच में भी संगम है, द्वापर युग कलयुग के बीच में भी संगम है। लेकिन ये जो संगम है, ये कल्प का संगम है। किसका ये संगम है? कि कल्प का अंत और कल्प की आदि, इसके बीच का ये छोटा सा ये संगम युग है। इस संगम युग की महिमा आप सभी ने भक्ति मार्ग में बहुत सुनी है। इसकी यादगार हर शास्त्रों में है, रामायण में है, महाभारत में है, और हम सभी वो मनाते आए। आप सबको याद होगा, लोग उसको आदिक मास के नाम से जानते हैं। 3 साल के बाद वो एक मास आता है, और भक्ति में मैंने भी बहुत भक्ति की, तो मुझे आज याद आ रहा था कि क्या विशेषता इस युग की। ये भक्ति मार्ग में भी हम मनाते आए, कुछ बातें हम भक्ति मार्ग में भी करते आए, लेकिन जो अभी श्रेष्ठ यथार्थ जो उसकी बात है, वो जब बाबा हमें मिले, बाबा से सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ, आत्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ, सृष्टि चक्र का ज्ञान प्राप्त हुआ। सबसे पहला बाबा से हमें सत्य ज्ञान मिला। कौन सा ज्ञान मिला? क्योंकि अनेक शास्त्रों में हमने अनेक बातें सुनी, लेकिन कैसी बातें थी? बाबा मुरली में कहते, आटे में नमक जितना सत्य था उसमें। तो ये जो संगम है, कल्प का अंत और कल्प का आदि, ये बीच का छोटा सा ये संगम युग है। लेकिन इस संगम युग में ही सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। सबसे पहला बाबा ने जो हमें सत्य ज्ञान दिया, तो कितनी बातें हमें सत्य मिली। आज तक हम सभी भक्ति मार्ग में सत्संग में सुनते आए, महात्माओं के द्वारा, गुरुओं के द्वारा भक्ति के, कि बताते आत्मा कहाँ रहती, शरीर में कहाँ रहती है। महात्मा लोग ब्रुकुटी में बोलते हैं, वो कहते दिल में, हृदय में। हम सोचते थे यहां ही रहती है, आत्मा बोला तो लोग यहां हाथ रखते। कितनी सहज बात है। पहला ही लेसन बाबा ने ऐसा हमें सुनाया कि आत्मा ब्रुकुटी में रहती है, आत्मा स्टार है, बिंदु है, और उस शरीर की मालिक है। आज तक हम, और परमात्मा भी कहां रहते कहते भक्ति में, वो भी यहां ही रहते हैं। अभी आत्मा भी यहां, परमात्मा भी यहां, फिर 4 धाम की यात्रा किस लिए? अभी जो जिसको मिलना है वो तो यहां ही रहता है। तो सबसे पहला ये बाबा से हमें सत्य परिचय मिला, हम आत्मा है और ब्रुकुटी निवास स्थान है। परमात्मा भी बिंदु है, और वो परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम कहां रहता है? परम धाम में। गीता में श्लोक है, हम पढ़ते थे, मज धामम परम धामम। ये शब्द है, लेकिन उसका अर्थ कोई भी जानते नहीं, क्योंकि भगवान भक्ति में अनेक हमने बनाए। 33 कोटि देवता, उतने 33 कोटि भगवान बन गए। हर एक के भक्त अलग अलग हो गए और एक तरफ हम कहते रहे सबका मालिक, तो ये कौन है। तो मेरे जीवन में भी मैंने रामायण का बहुत बड़ा ये था, राम पर बड़ी श्रद्धा, उसको हम भगवान मानते थे। कोई हनुमान को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, जिसकी जैसी भक्ति तो उसका भगवान वो। तो मैं समझता था कि हमारे शिरडी के साईं बाबा, आप सबने सुना है, सबका मालिक एक है बोलते। तो हमने कहा ये एक कौन है, ऊपर की है, वो कहाँ रहता है, ये खोज थी। जब बाबा का ज्ञान मिला तो पता चला कि ये सत्य ज्ञान मिला। तो संगम युग का सबसे पहला अगर हमें ये विशेषता है कि भगवान ने हमें भटकने से बंद कर दिया, सही बाप का परिचय मिला और अपना आत्मा का परिचय मिला। तो बाबा कहता है पढ़ाई का सार क्या है, आत्मा समझो और मुझे याद करो। तो पहला हमें भगवान ने यह सत्य ज्ञान दिया। कितनी गहरी बात बाबा बताई, देखो छोटी सी आत्मा है वो आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका रील पार्ट कितना बरस बजाती है, 5000 बरस सतयुग से लेकर हमारा ये पार्ट चल रहा है। तो रील कितनी छोटी हो गई अंदर। आज साइंस ने इतना रिसर्च किया है, पहले देखो सीडी थी, उसके बाद ये पेनड्राइव आए, पेनड्राइव के बाद और उसको माइनर किया, हफ्ता एक मास दो मास तक वो चलता रहे कंटिन्यू। लेकिन आत्मा ऐसी बिंदी है, जो बाबा ने हमें बताया वो कोई भी साइंस में ये रिसर्च नहीं कर सकता। छोटी सी बिंदी है और वो बिंदी के अंदर 84 जन्म का पार्ट भरा हुआ है। अभी तक हमारा पार्ट चल ही रहा है वंडरवाद। कोई भी ये साधु संत, कोई महात्मा, कोई गुरु ये बात नहीं बता सकता। ये दूसरी बात हमें सत्य पता चली। फिर भक्ति में हम सोचते थे कल लाखों वर्ष का युग है, बाबा ने ये भी सत्य ज्ञान दिया। ये संगम की विशेषता है, भगवान ज्ञान सागर अनेक बातों के राज बाबा ने हमें खोले। हमारी बुद्धि विस्तार से सार में आ गई, हम भटकने से बच गए, मुक्त हो गए। चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे, वो कौन है उसको ही ढूंढते रहे। तो जब उसका सत्य परिचय मिला तो हमारे मन को शांति मिली, हमें निश्चय मिला। तो संगम पर पहला सत्य ज्ञान में प्राप्त हुआ, एक आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय। दूसरा भक्ति मार्ग में शास्त्रों में कलियुग की आयु कितनी बताई मालूम है आपको, 4,32,000 वर्ष बताते, और इसके डबल द्वापर युग, द्वापर युग डबल त्रेता युग, त्रेता से डबल सतयुग, और पूरा कल्प लाखों वर्ष का किया है। कितना गड़बड़ है ये। और बाबा ने कहा हमें बच्चे 5000 वर्ष का कल्प है, कितने वर्ष का, बस बुद्धि को बाबा ने शांत किया। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और ये छोटा सा संगम युग। ये संगम की विशेषता है, स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है, आज तक हम गुरु गोसाई संत महात्मा अनेकों के द्वारा सुनते आए, पढ़ते आए, शास्त्र पढ़ते रहे, लेकिन ये संगम की सबसे बड़ी विशेषता है, स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है, नशा करता है। बाबा कहता है ये सदा दिल पर याद रहे, कौन मुझे पढ़ाता है। संगम युग की सबसे बड़ी विशेषता, सवेरे सवेरे हमें कौन उठाता है, उठाता है, कितना सुंदर गीत बजता है, लेकिन हम आलस्याल वेलेपन में भी उठते हैं कभी। जिनको ये याद है कि सवेरे से हमें भगवान हमें उठाता है, वो आके हमें पढ़ाता है, मुरली सुनाता है और सारा दिन वो हमारे साथ रहता है। तो बाबा ने एक बार डायमंड हॉल में कहा था, दुनिया वाले लोग जब ये सुनेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों में ये ब्रह्मा कुमार और कुमारियों को भगवान उठाता भी है सवेरे, पढ़ाता भी है और सारा दिन इनको मदद करता है, सदा साथ रहता है, तो ये जब भक्त लोग सुनेंगे तो आपको कहेंगे क्या भगवान फ्री बैठा है तुम्हारे लिए। तो बाबा ने उसका जवाब दिया था आगे, हाँ उनको बोलो भगवान संगम युग में हमारे लिए खाली बैठा है। कितनी बड़ी बात है, जो चाहिए ले लो, भगवान का वरदान है, मुझे यूज करो। हर संबंधों में बाबा ने कहा मुझे यूज करो। देखो हम सबके जीवन में, मेरा भी अनुभव है, मेरे लौकिक पिताजी बचपन में, मैं छोटा था तभी चले गए, शरीर छूटा, तो जो संबंध नहीं उसका बड़ा महत्व होता है, विशेषता। किसी को बड़ी बहन नहीं, छोटी बहन नहीं, किसी को भाई नहीं, किसी को माता का प्यार नहीं मिला, तो जो बाबा के बच्चे बने वही संबंध का ज्यादा प्यार कौन देता है? बाबा। भक्ति मार्ग में मुझे नशा था, भले वो देहधारी पिता गया, लेकिन मेरा सच्चा पिता कौन है? वो भगवान है, स्वर्ग में शक्ति। और जब बाबा का परिचय मिला, ज्ञान मिला, सबसे बड़ा मुझे नशा चढ़ा। तो बाबा भी क्या कहता है, मैं हूं तुम्हारा बाप और तुम हो मेरे बच्चे। तो संगम युग हमारा यही संबंध है। बाकी बाबा कहते अष्ट संबंध मैं आप सबके साथ बता हूं, तो हर संबंध का प्यार देता है। लेकिन वो हर संबंध का प्यार हमें कब मिलता है? जब हमारा वो लौकिक जो संबंध है उसको अगर हम भूलते, तो बाबा के साथ आप बहन का संबंध जोड़ो, बहन का प्यार देता है, राखी बांधता है ना बाबा। पिता के संबंध से वो देखो हमें वर्षा दे रहा है, उसकी प्रॉपर्टी के हम मालिक बन रहे हैं। टीचर के संबंध से पढ़ा रहा है, खुदा दोस्त के संबंध से हमें साथ निभा रहा है। हर संबंध की पालना बाबा हम पंचों को देता है। तो यही युग की प्राप्ति महान है, और इसको अनेक बातों में भक्ति मार्ग में बताया है। कोई भगत उसको आदिक मास से रूप से जानते हैं, कई शास्त्रों में उसको पुरुषोत्तम मास बोला है। पुरुषोत्तम मास माना, जैसे इसको युग को बाबा कहता है, कौन सा युग है ये? पुरुषोत्तम युग है, संगम युग का नाम, क्योंकि पुरुषों में उत्तम बनते हो, पतित से पावन बनते हो, मनुष्य से देवता बनते हो, और ऐसा श्रेष्ठ महान बनाने वाला बाबा इस युग में ही बनाते हैं। और इसकी महिमा भक्ति में हमें याद आता है, आप सबको याद होगा, भक्ति में जब ये पुरुषोत्तम मास आता है तो भक्त लोग क्या करते, दान पुण्य करते हैं, भक्ति करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, ये सब करते हैं, भगवान का नामस्मरण करते, भजन करते हैं। और हम संगम युग में भी क्या कर रहे, सोचिए। बाबा ने कहा जब मेरे बच्चे बने हो, भविष्य में तुम्हें देवता बनना है, तो देवता कौन बनेंगे? बाबा कहता है देने वाले देवता बनेंगे। कौन बनेंगे? देवियों के हाथ कैसे दिखाए, दाता देना, वरदान देना, धन देना, लक्ष्मी का। तो जो बच्चे बाबा कहते हैं, क्योंकि बाप हमारा दाता है, तो दाता के बच्चे भी। तो बाबा कहता है राजा की और प्रजा की विशेषता क्या है? भविष्य में तुम्हें राजा बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो लक्ष्मी नारायण क्या है? सब राजा, सबका पालनहार होता है, सबको पालना करता है, देता है। तो बाबा कहता है तुम्हें भी देना है। अभी देना है माना हम सोचते क्या देना है। बाबा कहता है जो रोज मैं खजाना देता हूं मुरली के द्वारा, रोज सवेरे आकर पढ़ाता हूं, ये ज्ञान को क्या करो, तुम क्या करो, ज्ञान को देते रहो। बाबा ने आज मुरली में कहा, बच्चे कौन से बच्चों को मैं प्यार करता हूं, याद है? भूल गए। बाबा ने आज कहा जो बच्चे दिन रात मेरी सेवा में लगे रहते हैं, तन से मन से धन से, ये भाग्य बनाना है। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए हमें पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अगर हम किसी को बाबा का परिचय नहीं देते, यज्ञ की तन से सेवा नहीं करते, मन से मनसा सेवा नहीं करते, धन से कुछ ईश्वरीय कार्य में सफल नहीं करते, भविष्य में क्या बनेंगे हम? देते नहीं रहेंगे। तो बाबा कहता है तुम्हें हर प्रकार से सेवा करनी है, जितना तन से सेवा करोगे यज्ञ की, उतना भविष्य में तन कैसा मिलेगा, कंचन का या निरोगी शरीर मिलेगा, देवताओं जैसा सुंदर शरीर मिलेगा। जितना मनसा से सेवा करोगे, मनसा वाचा कर्मना, उतनी आपकी मनसा कैसी होगी? पावरफुल होगी, शक्तिशाली होगी। और उतना बाबा कहता है जो धन है, जो संगम युग पिछले संगम में बाबा से हमने लिया था, अभी तक हम खाते आए, उसका उपभोग होते आए, और जो थोड़ा सा हमारे पास है, तो बाबा कहता है वो भी इस यज्ञ कार्य में क्या करना है? सफल करना है। बाबा ने कहा बड़ों की अमीरों के लाखों रुपए और गरीब का सच्चे दिल से एक रुपया, अगर वो इस कार्य में लगाता है तो बाबा ने कहा दोनों की बराबरी, क्योंकि ये हजार से एक रुपया दे रहा है और वो करोड़ों रुपए से एक रुपया लगा रहा है। वो हजार रुपए लगाए, एक लाख रुपए लगाए, और गरीब एक रुपया अगर लगाता है तो सच्चे दिल पर, क्योंकि ये सच्चाई से दिल का, ईमानदारी का पैसा, सच्चाई कमाई का पैसा लगाता है, तो बाबा कहता है दोनों का भाग्य। इसलिए भक्ति मार्ग में भगवान का गायन है गरीब निवास, क्या टाइटल है, क्योंकि वो गरीबों को भाग्य बनाने आता है। और इसलिए भक्ति मार्ग में आप सबको पता है इसकी यादगार संगम युग की सुदामा और कृष्ण की बड़ी महिमा है। सुदामा कौन था? गरीब था, झोपड़ी में रहता था, ब्राह्मण था, कितना गरीब था, उसको पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, वो ब्राह्मण था। और दोस्ती किसके साथ थी? भगवान के साथ। भक्ति में तो अभी हम कहते राजकुमार, इतनी महान दोस्ती, महान परमात्मा के साथ उसका सच्चा प्यार था, लेकिन निस्वार्थ प्यार था। कैसा था? बाबा ने आज, कल भी बाबा ने मुरली के वरदान में कहा, बच्चे सेवा करते हैं लेकिन सफलता क्यों नहीं मिलती? तो बाबा कहता है बच्चे सेवा करते थोड़ी और उसके पीछे क्या रखते हैं? स्वार्थ रखते, कुछ कामना रखते हैं। तो बाबा कहता है वो सेवा तुम्हारी सफल नहीं होती, वो श्रेष्ठ सेवा नहीं गाई जाती, क्योंकि गीता में लिखा है कर्मण्याधिकारस्य मा फलेषु कदाचनम्। मतलब कर्म करो, हमें सेवा करनी है, लेकिन उसकी फल की अपेक्षा नहीं करना। अच्छी सेवा करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे तो उसका फल अच्छा मिलने वाला है, लेकिन करने के पहले सोचे कि इससे मुझे क्या मिलने वाला है। लोग कई बार एक दूसरे को मिलते बोलते आओ दुनिया में क्या होता है, इससे मिलने से क्या मिलने वाला है, कुछ स्वार्थ हो तो। लेकिन हम, बाबा हमारी निस्वार्थ सेवा करता है, तो हम सबको भी सबकी सेवा कैसी करनी है? निस्वार्थ करो, उसका फल हमें वो नहीं देंगे। कौन देने वाला है? स्वयं भगवान हमें दे रहा है और 21 जन्म का भाग्य हमारा बना रहा है। तो इसीलिए तन तंदुरुस्त है तो तन सेवा में लगाओ। अगर हम अभी नहीं लगाते, कल कुछ हो जाए तो, किसी का कमर दर्द हो जाए, किसी के घुटने दर्द होते, लोग बोलते अच्छे थे तभी सेवा नहीं की, और अभी गाड़ी खराब हो गई, अभी सोचते हम दौड़े, कैसे दौड़ेंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा कल पर नहीं छोड़ो, कल कल करोगे तो क्या होगा? काल खाएगा। कई सोचते धन सेवा हम कल करेंगे, परसों करेंगे, बाबा कहता है अभी नहीं तो, अभी जो संकल्प आया है यज्ञ में सफल करो। तो यह संगम की विशेषता है कि बाबा हमारा 21 जन्म का भाग्य बनाने आया है। इसी संगम युग पर मुरली का सुख आनंद, भक्ति मार्ग में हमने मुरली की कितनी बातें सुनी, रामायण महाभारत, गोपियां दौड़ती थी, कृष्ण मुरली बजा रहे हैं बांसुरी, हम सोचते थे यही बांसुरी माना मुरली है, लेकिन परमात्मा की मुरली चल रही है, और उसका जो अतीन्द्रिय सुख का आनंद है वो सतयुग में लेंगे। बाबा मुरली आके पढ़ाएंगे सतयुग में, वो कौन से युग में पढ़ाते हैं? यह संगम युग में ही भगवान के मुरली का आनंद, भगवान की अतीन्द्रिय सुख याद का, झूले में झूलने का आनंद, वो हमें यह संगम युग में मिलता है। इतना बड़ा दैवी परिवार बेहद का कहां मिलता है? सतयुग में सभी अपने अपने महलों में होंगे, लेकिन परिवार कहलाए जाएंगे वहां, देवता परिवार नहीं होगा वहां। यहां वो तो छोटे से परिवार में रहेंगे, हम दो हमारे दो कितने होंगे? चलो बाबा को याद करेंगे,
का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए।
शांति। तो यही संगम युग में हमें पुरुषोत्तम माना सभी से उत्तम पुरुष बनना है, मनुष्य से देवता संपूर्ण और संपन्न बनना है। तो संपन्न और संपूर्ण बनना है तो हमें उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? तो सबसे पहले इस ब्राह्मण जीवन में, क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन भी हमें पूरे कल्प में कौन से युग में मिलता है? ईश्वरीय जन्म, ब्राह्मण जन्म, ये स्वयं परमात्मा के द्वारा ये दिव्य ईश्वरीय जन्म हमें प्राप्त होता है। तो इसमें हमें पूरा इस संगम युग का फायदा लेना है। कई बार हम अलबेले होते हैं, आलस्य आता है, कई बार हम समय को भूलते हैं, लेकिन बाबा ने कहा जो सच्चा पुरुषार्थी है, सच्चा योगी है, तो वो संगम युग के हर सेकंड को सफल करेगा। तो इस ब्राह्मण जीवन में हमें सबसे पहले हमारी दिनचर्या बाबा जैसे हमें कहते हैं श्रीमतानुसार रखनी है। भगवान मिला है, खुशी में रहना है, ये सब हमें याद है, लेकिन कई बार हम साधारण होते हैं, ये सब बातें भूलते हैं और कई बार तो हमारी खुशी भी गुम होती है। बाबा कहते ये युग खुशी का युग है, क्योंकि स्वयं भगवान तुम्हें मिला है, भगवान का खजाना मिल रहा है, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहा है, स्वयं भगवान हमारी पालना कर रहा है। ये सब नशे की बातें हम भूल जाते, क्योंकि स्मृति और विस्मृति यही बातें दिखाई। रामायण में देखा ना हमने, जब हनुमान को सात समुन्दर पार करने थे सीता की शुद्धि के लिए, वो भी भूल गया था, उसको स्मृति दिलाई पड़ी, आप तो पवन पुत्र हो और आपने ही ये कार्य किया था, बस इतना उनको याद दिलाया, एक सेकंड में उन्होंने वो स्वरूप धारण किया। तो बाबा भी क्या करते, हमारी भी वो हनुमान जैसी मूर्छित अवस्था हो गई, हम भूल गए हम ही मनुष्य से देवता बने थे और फिर से हमें ही बाबा बनाने आया है। कल्प पहले हम ही संपन्न बने थे, कल्प पहले संपूर्ण हम ही बच्चे बने थे, बाबा कहते हैं तुम्हारे से और कोई दूसरा आने वाला नहीं। तो ये नशा रखना, और सबसे पहली दिनचर्या बाबा बताते हैं सवेरे सवेरे अमृत वेला। ब्राह्मणों की दिनचर्या कब से शुरू होती है? भक्ति मार्ग में भी देखो ब्राह्मण क्या करते, पूजा पाठ मंदिरों में जाते, सारे मंदिरों में पूजा कौन करता है? यही लोग करते। तो यह संगम के ब्राह्मण की यादगार है। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण वही जो ब्रह्मा मुहूर्त में उठता हो, जो ब्रह्मा मुहूर्त में उठता हो। अभी ये बात जब आती अमृत वेले की, हम जानते बहुत सारे भाई बहनों के लिस्ट में अमृत वेला है ही नहीं, मुरली सुनने नशे में आएंगे। तो बाबा कहता है तो भक्ति मार्ग में भी क्या करते आए, नहाए धोए कथा सुनने जाते थे, और यहां भी अगर ऐसी सत्यनारायण की कथा सुनने आए तो वो नशा नहीं चढ़ेगा। तो हमें संगम का जो आदि काले दिन का जो अमृत वेला ब्रह्मा मुहूर्त, इसका पूरा फायदा लेना है। तो सारा दिन जब आप देखो सवेरे सवेरे बाबा से मिलन मनाते हो, रूहरियान करते हो, तो सारा दिन नशे में बीतता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला हमारा मिलन किसके साथ हुआ है? दुनिया में भी लोग कहते हैं आज दिन खराब जा रहा है, हमने किसकी शक्ल देखी? तो बाबा कहता है मेरे मीठे बच्चों, क्या किसकी शक्ल क्यों देखते हो? सवेरे उठकर किसकी शक्ल देखो? सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा को गुड मॉर्निंग करो, और जिसकी गुड मॉर्निंग स्वयं बाबा से, भगवान से शुरू होती, सुंदरम से, तो उसका दिन सारा सुंदर जाता है। बाबा कहता है जो बच्चे सवेरे उठकर मुझे याद करते हैं, बाप दादा उन बच्चों को करंट देते हैं। क्या देते हैं? क्योंकि सारा दिन माया आती है, संकल्पों के द्वारा आती, अनेक बातों के द्वारा आती है, तो माया से फेस करने की शक्ति बाबा हमें सवेरे सवेरे देता है। अगर हम सवेरे उठते नहीं, अपनी बैटरी को चार्ज नहीं करते, तो क्या होता है फिर सारा दिन? पहला ही बाबा का श्रीमत मिस किया तो सारा दिन फिर हम अलस्य, अलबेलापन, उदासी, और बाबा को तो भूल ही जाते हैं। तो इसलिए संगम युग का हमें पूरा आनंद लेना है। कितना साल? 85 बरस, 85 बरस हो गए, इसमें हम तो लेट आए। देखो दादिया हमारी, आदरणीय दादिया से भी कितनी, जब से बाबा आए तब से प्राप्ति कर रही है 85 बरस। कोई 50 साल से आए और हम कोई 5 बरस, 10 बरस, 2 बरस, और अभी भी अलवेलेपन है, तो क्या है? बाबा कहते हैं इसलिए दुनिया में कहावत है, भगवान ने भाग्य बांटा तो तुम क्या कर रहे थे? प्रैक्टिकल है ना, रजाई में सो रहे थे। सवेरे सवेरे भगवान हमें पालना देने आता है, वरदान देने आता है, करंट देने आता है, उनकी आशीर्वाद प्राप्त होती है, खुशी से भरपूर करने आता है, और उस समय हम सोए रहते हैं। तो अमृत वेला कभी भी मिस नहीं करना है। अभी अमृत वेले का महत्व पूरे कल्प के लिए भी है। जो बच्चे सवेरे सवेरे संगम युग में दिन के आदि में उठते हैं, वही बच्चे कल्प के आदि में बाबा कहते जाएंगे, आदि का संस्कार आदि में जाएगा। अगर हम अमृत वेले उठते नहीं और हम कहते भविष्य हमें क्या बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, लक्ष्मी नारायण बनेंगे? उनके राज में भी जाना है तो भी अमृत वेला करनी पड़ेगी, क्योंकि हर कर्म का हमारा वो संस्कार है। देखो भक्ति में हम भक्ति करते आए, वो संस्कार था मांगने का। अभी बाबा ने कहा अभी मांगना नहीं तुम्हें, मांगने से मरना भला, क्योंकि भगवान तुम्हारा बाप है, उसके अधिकार से प्रॉपर्टी लो, क्योंकि वो दाता है और दाता के बच्चे तुम दाता हो। तो बाबा कहता है सवेरे सवेरे अधिकार से मुझे मंथन करो, याद करो, वरदानों को याद करो, प्राप्ति को याद करो, संगम युग को याद करो। जितना आप सवेरे सवेरे मंथन करेंगे तो सारा दिन नशा और खुशी रहेगी। एक अमृत वेला और दूसरी है मुरली। मुरली भी रोज सुननी है। कई भाई बहन हम जाते सेंटरों में, कहते भाई जी हम हफ्ते में एक बार आते, गुरुवार टू गुरुवार। गुरुवार को क्यों? क्योंकि भोग मिलता है। अब बाबा के लिए आए, मुरली के लिए आए या भोग के लिए आए? फिर भी बाबा ने देखो, अभी भी बाबा आए। बाबा ने कहा ना, आखिरी बच्चे को भी बाबा क्या करता है? प्यार करता है। वो कहता है दिल से, मेरा बाबा। तो बाबा ने कहा कि मैं भी कहता हूं मेरे, कितना बाबा भोला है। ये प्रैक्टिकल रूप आपने देखा ना, अभी बाबा आए थे तो बाबा का प्रैक्टिकल ये रूप। बाबा हर बच्चे को विशेषता के रूप से देखता है। संगम युग तो विशेष युग है ही। विशेष क्यों है? क्योंकि हम बच्चे भी विशेष है विशेष। जब ये अगर याद करोगे कि मैं विशेष बच्चा हूं, सवेरे सवेरे उठ के याद करो मैं महान आत्मा हूं। कौन हूं? क्यों महान हूं? क्योंकि स्वयं भगवान मुझे पढ़ा रहा है, स्वयं भगवान मेरे साथ है, स्वयं भगवान मुझे खिला रहा है, स्वयं भगवान मुझे पालना दे रहा है। ऐसी नशे की बातें याद रख। तो बाबा कहते अपनी घोट तो नशा चढ़े। चढ़ता है नशा? तो ये नशा चिंतन से हमें चढ़ता है। इसलिए चिंतन रोज जो मुरली सुनते हैं, खाली सुनना नहीं, क्योंकि दो कान है हमारे। हमारे जगदीश भाई जी कहते थे मनुष्य को दो कान है, वो दो काम करते हैं। एक कान सुनने का और दूसरा कान कथा सुनते आए। हम क्या किया? रात भर रामायण सुनते थे, सवेरे पूछा राम की सीता कौन, सोचने लगते थे। क्यों? अटेंशन नहीं। तो बाबा ने कहा कि पढ़ाई अटेंशन से पढ़ो, डायरी में नोट करो और जब जब टाइम मिलता है वो डायरी खोल के देखो। क्योंकि हमें बीच बीच में याद दिलाने से हमें फिर से नशा आता है। क्योंकि हम बीच बीच में देहवान में आते हैं, हमारी स्मृति साधारण हो जाती है। तो इसीलिए इस युग की जो विशेषता है वो हमें युग याद रखना है। सदा हमें याद रखना हम संगम पर है। कहां है? क्योंकि पुराना कलयुग, पुरानी दुनिया जा रही है और नई दुनिया आ रही है। दुनिया तो समय पर आएगी, पुरानी दुनिया जाएगी, लेकिन मुझे संपूर्ण बनकर जाना है। और आप सबको याद हो, अभी पुराना साल भी जा रहा है। कितने दिन रहे? थोड़ा समय रहा है, 10-15 दिन। पुराना साल जाएगा और नया साल, आज मैंने कहीं पढ़ा, आने वाला साल भी। आप सबने इस मास का ज्ञानामृत देखेंगे तो ज्ञानामृत में लिखा है 2020 है ना आने वाला, तो 2020 इसको कहते हैं 2020। क्या कहते हैं? आप सबने क्रिकेट देखा होगा, देखते सुनते होंगे। पहले 50 ओवर की मैच चलती थी, अभी 2020 चलती है। तो दोनों में क्या अंतर है? समय थोड़ा होता है 20 में और रन ज्यादा निकालने होते। तो बाबा कहते हैं अभी जो 2020 आ रहा है, ये सबको कह रहा है अभी समय थोड़ा है और तुम्हें पुरुषार्थ ज्यादा करना है। क्यों? क्योंकि अभी समय संगम का पूरा समाप्त होते जा रहा है। तो भगवान का वरदान है बच्चों को, मुझे यूज करो। जब भी बाबा कहते कोई बात आती है तो मुझे यूज करो। लेकिन कौन यूज करेगा? कौन यूज करेगा? जब याद रहेगी, स्मृति रहेगी हमें नशे में, उसके हम श्रीमत पर चलते होंगे, तो ब्राह्मण जीवन में सबसे पहली अमृत वेला और मुरली, ये कभी मिस करना नहीं। माया पहले हमारी इस दोनों पर वार करती है। पहले सवेरे सवेरे आलस्य आता है, अलार्म बजता है, सभी अलार्म की व्यवस्था करते हैं, लेकिन ठंडी के दिनों में तो खास सोचते हैं 5 मिनट के बाद उठेंगे। कितना मिनट के बाद? और फिर क्या होता है रिजल्ट? 5 ही बज जाते हैं। तो बाबा कहता है अलवेला पर नहीं। बस कितना सुंदर गीत बजता है अमृत बेले, मेरे लाडले जागो। कौन बोल रहा है? स्वयं भगवान बच्चों को उठा रहा है। तो हमें तुरंत नशा जनाई प्राप्ति का समय है, बाबा से मिलन मनाने का। नींद का सुख तो सारा कलप लेते आए, हम लेते आए ना, रजाई छोड़ने का मन नहीं करता है। बाबा कहते हैं रजाई नहीं छोड़ोगे तो रजाई नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी तो क्या चाहिए फिर? तो भगवान हमको मिला है, तो बाबा मिला तो सब कुछ मिला। तो इसलिए संगम की विशेषता है, मनुष्य से देवता बनना है तो मुझे साधारण नहीं लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। कैसा बनना है, क्या बनना है बोला है तो सभी कहेंगे लक्ष्मी नारायण, उसमें कमी नहीं बोलते। और पुरुषार्थ करना है तो कभी उठेंगे कभी नहीं, कभी मुरली सुनेंगे तो बाबा कहते ऐसा पुरुषार्थ, मुरली सुनने से अमृत वेला करने से आप राजा नहीं बनोगे। तो हमें औरों को सेवा करनी है, बाबा ने जो ज्ञान दिया है सबको बताना है, मेरा बाबा आ गया, आके नई दुनिया बना रहा है। जितनी आत्माओं की हम सेवा करेंगे बाबा कहता है वो तुम्हारी प्रजा बनेगी। अभी हम ही सारा दिन व्यवस्थित नहीं चल रहे तो बाकी सेवा हम कब करेंगे? तो हमें अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी है, बाबा के खजानों से भरपूर होना है, संपन्न होना है और संपूर्ण होना है। तब कब बनेंगे? रोज मुरली ज्ञान सुनते हैं, लेकिन ज्ञान सुनने से खाली संपन्न नहीं बनेंगे। ज्ञान के साथ दूसरा क्या चाहिए? योग, तपस्या। हमारे गृहस्थी जीवन में सभी हम भाई बहन देखते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, परिवार में अनेक समस्याएं होती है, तन की होती, मन की होती है, धन की होती है, जन की समस्या है ना, हम सभी अनुभवी है। रोज एक एक समस्या होती कोई ना कोई। लेकिन बाबा ने कहा इस समस्या से मुक्त होना है तो क्या करो? खाली मुरली सुनने से समस्या समाप्त नहीं होगी। तो बाबा कहते करो तपस्या, आगे क्या बोलते मिटे समस्या। तब ये सुंदर समय आ रहा है, दिसंबर पूरा हो रहा है और जनवरी शुरू हो रहा है, तो जनवरी में क्या करते बाबा के बच्चे? तपस्या। तभी से हम सभी शुरू करेंगे, क्योंकि बाबा भी नए साल में आएंगे, है ना? नया साल शुरू होगा तो बाबा नया युग की बात करते हैं। तो जब नया साल आ रहा है, नव युग आ रहा है और हमें मनुष्य से देवता बनना है, तो हमारा सब कुछ नया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इस साल में जो जो हमारे से गलतियां हुई, इस साल में जो जो पुरुषार्थ हम नहीं कर पाए, तो इस मास में अभी जो 15 दिन बाकी है इसमें अपने आप को चिंतन करना है। औरों का चिंतन नहीं करो। जब अच्छी तरह से हम बहुत सौभाग्यशाली है, ऐसे समय पर बाबा के घर में अवतरण भूमि में मधुबन में है, सब हम दुनिया की बातें छोड़ के यहाँ आए, तो क्या करना है? तेरी मेरी ये तो करते नहीं, लेकिन पूरा फायदा लेना है। डिपार्टमेंट में जब सेवा है तब सेवा करो। बहुत सुंदर यहाँ बाबा के कितने अच्छे अच्छे बगीचे, बगीचे में एकांत बैठकर याद करो, बाबा के कमरे में तपस्या करो। जितना योग करते रहेंगे तो ये योग आपकी एक यादगार बनेगा, क्योंकि जनवरी मास में खास बाबा का वरदानी मास होता है। कैसा होता है? क्योंकि हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी को अपना संपूर्ण रूप प्राप्त किया। और बाबा भी संपूर्ण कैसे बने? कैसे बने तो बाबा को भी क्या बताया गया? अब एक तो बाप दादा हमारी आदरणीय गुलजार दादी के द्वारा, संदेश के द्वारा बाबा को बताया गया, तब बाबा का पुरुषार्थ तेज हुआ। बाबा पूछते थे बच्ची संदेश में वतन में क्या देखा, तो दादी जी ने संदेश लाया और बताया बाबा वहां आपका एक संपूर्ण रूप मैंने देखा, वहां भी बाबा है और आप भी बाबा हो। तो बाबा ने कहा उस बाबा में और इस बाबा में क्या अंतर है, बाबा पूछ रहा है। तो दादी ने कहा संदेश में वो संपूर्ण रूप है, वो लाइट और माइट स्वरूप का रूप दिखाई दिया और ये अभी बन रहा है। इतनी बातें बाबा ने सुनी तो बाबा रोज फिर अमृत वेले से दिन भर सारी धुन लगी। बाबा अपने संपूर्ण रूप को आह्वान करते थे कि संपूर्ण अपना रूप देखते थे लाइट रूप में, और संपूर्ण फरिश्ता, संपूर्ण प्राप्ति और संपन्न रूप, जो शक्तिशाली लाइट माइट का फरिश्ता रूप बाबा रोज आह्वान करते थे, वो जैसे फरिश्ता रूप आ रहा है और इस बाबा के स्थूल रूप में समा रहा है। तो बाबा ने कहा जैसा मेरा संपूर्ण रूप वतन में, वैसे तुम बच्चों का भी संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में। क्यों? बाबा हमारा अलौकिक ब्रह्मा बाबा पिता है, तो बाबा हम बाप है, ब्रह्मा है, तो हम सभी बाबा के बच्चे भी कौन है? मास्टर ब्रह्मा है। कौन है? मास्टर ब्रह्मा। तो हम सबका भी संपूर्ण रूप वतन में है। तो रोज अमृत वेले से, अभी से 15 दिन है और जनवरी मास पूरा, आप रोज अपने संपन्न स्वरूप को देखो कि मेरा वो संपूर्ण रूप है और वो स्वरूप लाइट माइट का फरिश्ता रूप यहाँ आ रहा है, इस शरीर में मिल रहा है। मैं यहाँ से फरिश्ता रूप धारण करके जाके संपूर्ण उसको मिल रही हूँ। तो जब जितना उस स्वरूप को मिलते रहेंगे उतना क्या होता रहेगा? धीरे धीरे आपकी स्थिति, आपका स्वरूप वो संपन्न बनते जाएगा। और देखा ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी है ना, और 1969 में अपना संपूर्ण रूप प्राप्त किया। तो ये लगन, तो जब बाबा ने वो पुरुषार्थ किया तो हमें भी बाप समान बनना है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? और ये अभ्यास विशेष सवेरे सवेरे। क्यों बाबा कहते सवेरे? क्योंकि ये समय का समय बहुत सुंदर समय होता है, साइलेंस होता है। जितना आप एकाग्र हो सकते हैं उतना बाबा की शक्ति, बाबा की मदद। और जनवरी मास तो बिल्कुल ये सोचना ही नहीं, पहले से तैयारी। और ब्राह्मण जीवन में जब तपस्या करनी है तो कई चीजों का अटेंशन रखना होता है। रात को थोड़ा भोजन कैसा? ज्यादा हल्का। तो जितना आप हल्का जल्दी भोजन करोगे उतना हम हल्के हो जाएंगे, नहीं तो भोजन कई 9-10 बजे करते हैं तो भारी हो जाओगे। और फिर बाबा कहते उठते तो है लेकिन शरीर साथ देता नहीं। मधुबन में भी आपने देखा कितनी बेहद की सेवाएं होती है, लेकिन 10 बज जाते हैं तो बाबा कहता है 10 और बस, ज्यादा ज्यादा 10:30 तक सभी बेड पर अपने बाबा की गोद में आराम करते। तो हम सबको भी घरों में ध्यान रखना है। अगर आप ज्यादा समय रात को रहोगे सवेरे को भूल जाओगे, क्योंकि सवेरे हमारी मुलाकात किसके साथ है? स्वयं भगवान के साथ है। इससे बड़ा कोई काम होता है घर पे? कुछ नहीं। एक आदत लगी है, नींद नहीं आती, क्या करना है? नहीं, अपनी दिनचर्या बदलो। 10-10:30 तक आराम करो, बराबर आपकी 3:30 आंख खुलेगी। क्योंकि साइंस मेडिकल में बताया गया है शरीर को 5 घंटे कम से कम आराम चाहिए। कितना चाहिए? अभी आप लेट सोगे तो लेट उठोगे फिर। इसलिए भक्ति में भी कहते सवेरे सो जाओ सवेरे उठ जाओ, माना जल्दी सो जाओ जल्दी। और भोजन का विशेष ध्यान। तो जिसको लगन है, लक्ष्य है कि मुझे ऐसा बनना है, तो क्या करेगा? लक्षण भी धारण करेगा। तो ये हम सबको याद करना है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये जनवरी मास हम सबके लिए वरदानी मास होता है। जनवरी मास में जो चाहे बाबा से हम प्राप्त कर सकते वरदान। इसीलिए एक ही नशा रखो, मैं बाप समान हूँ। कौन हूँ? बाबा ने अभी आए थे, बाबा ने यही मुरली में बताया, बच्चे रोज एक सोमान ले लो और उस सोमान का स्वरूप बनो। एक दिन सोमान ले लो, बाबा सर्वशक्तिवान है, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सारा दिन बीच बीच में आप याद करते रहोगे, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरा बाप सर्वशक्तिवान है, उससे सारी शक्तियां मुझे मिल रही। क्या अनुभव होगा? मेरी कमजोरी आत्मा की खत्म हो जाए। एक दिन ये अनुभव करो, मैं विघन विनाशक आत्मा हूँ, तो धीरे धीरे आपके जीवन के विघन समाप्त हो गए। अब ये अभ्यास नहीं करेंगे तो कब करेंगे? खाली मुरली सुनी, सवेरे योग लगाया और सारा दिन कोई चिंतन नहीं, कुछ तेरी मेरी साधारण रूप से रहे और फिर शाम। क्योंकि इस पढ़ाई में स्थिति महान है, इसीलिए ये बातें हम सबको चाहिए। और जिसका प्यार बाबा से है, सच्चे दिल पर बाबा भी राजी होता है। इसलिए मैंने सुदामा की बात सुनाई। सुदामा के पास क्या था? क्या दिया उसने? चावल मुट्ठी दी। और उसके बदले में क्या मिले उसको? सोने के महल कैसे मिले? क्योंकि दिल का सच्चा प्यार उसका था। रामायण में आपने देखा शबरी ने क्या दिया उसको, झूठे बेर दिए, वो भी अच्छे बेर नहीं थे। दुनिया बोलने लगी झूठा बेर राम को खिलाया, लेकिन राम क्या कहते, वो झूठा इसलिए कर रही कि मेरे राम को खट्टा न लगे। तो भगवान उसके पीछे की भावना देखता है, और भक्त दुनिया क्या देखती है, स्थूल रूप देखती है। तो हमें सच्चाई से अंदर चिंतन करना है। सारा कल्प हमने देहदारी से प्यार किया, देहदारी से मिलन मनाया, देहदारी के साथ रहे, लेकिन ये संगम युग ऐसा युग है कि ये संगम युग हम किसके साथ है बोलो, भगवान के साथ है, ऑल माइटी अथॉरिटी, त्रिलोकी नाथ, ज्ञान का सागर, और वो स्वयं भगवान हमें आया है, हमें साथ दे रहा है। तो हमें उसका साथ और हाथ कभी छोड़ना, लेकिन ये साथ तभी रहेगा सवेरे उठकर पहले उसके साथ हम मिलन मनाएंगे। इसलिए लास्ट में जब सोते समय भी आधा घंटा 15 मिनट सारे दिन की दिनचर्या बाबा को सुनाओ, और बाबा की गोद में बाबा हम आ गए। तो रात को अगर हम बाबा की गोद में आराम करते तो सवेरे आंख खुलते भी कोई याद आएगा। लेकिन कई लोग टीवी देखते रात को, न्यूज देख रहे, ये देख रहे हैं, कोई इधर उधर की बातें, माताएं बहुत समय के बाद कोई रिश्तेदार मिलता है घर में आता है, इधर उधर की बातें करते करते आराम किया, सवेरे बाबा याद आएगा नहीं। तो विधि से सिद्धि है, इसलिए भक्ति मार्ग में भी देखो भगत विधि से पूजा करते। कौन सी देवता की विधि से पूजा करेंगे, जो संगम युग में अपना पुरुषार्थ विधि से करेंगे, क्योंकि हम भविष्य में कौन बनने वाले, देवता बनेंगे, सतयुग त्रेता में देवता का पार्ट बजाएंगे, और द्वापर युग के बाद क्या होगा, हमारी पूजा होगी। लेकिन जिस भक्त ने, जैसे देवता ने पूजा अपना पुरुषार्थ किया संगम युग में, ऐसे भगत लोग भी उसकी पूजा, जो अमृत वेले उठते नहीं, 6-7 बजे उठेंगे, मुरली सुनने आएंगे नहा धो के, उनके भगत भी क्या करेंगे, 6-7 बजे आपके मंदिर में आएंगे, राइट, और वैसी पूजा करेंगे। कई लोग झुटके देते देते याद करेंगे बाबा को, तो भगत लोग भी ऐसे झुटके देते देते आपके मंदिर में आएंगे। तो जैसा हम कर्म विधान इस संगम युग पर बना रहे, वैसे ही हमारा पूरे सारे कल्प में बनता है। इसीलिए हम सबको इस संगम युग का महत्व जानना है, विशेषता जानना है, और इस विशेष समय को अपना सफल करना है। तब बाबा कहता है तुम बच्चे क्या बनोगे, विशेष बनोगे। नहीं तो ज्ञान सुना, अगर हम उस अनुसार पुरुषार्थ नहीं किया, श्रीमत अनुसार नहीं चले, तो बाबा कहता है फिर क्या होगा, छोटा मोटा पद मिलेगा। तो एक 5000 वर्ष के बाद फिर बाबा आएगा, बीच में आने वाला नहीं है। इसीलिए हमारा साथी कौन है, अभी वर्तमान भगवान साथ है, इसलिए हमारा गीत है ईश्वर अपने साथ है तो डरने की बात है। तो आजकल क्या होता है, दुख अशांति ये होगा, अरे भगवान मेरे साथ है तो मुझे डरना, मेरा बॉडीगार्ड कौन है, नशे से नहीं बोलते, कौन है, स्वयं भगवान है। तो हमें इस विशेषता का ये करना है, इसलिए इतने राज बाबा ने हमें सत्य ज्ञान देकर खोल दिए। और सबसे बड़ा अगर बाबा ने विशेष बात दी है तो ड्रामा का राज, कौन सी बात, कुछ भी बात होती थी घर में, ये हुआ छोटी सी बात, अभी क्या बोलते हैं बाबा के बच्चे, जो हो गया वो ड्रामा, छोटा सा शब्द है लेकिन हल्का कर देता है। कितनी बातें, कुछ नुकसान हो गया बोलते हैं ड्रामा, कोई शरीर छोड़ दिया क्या बोलते हैं, ड्रामा, कलप पहले हुआ था, कोई बीमार पड़ गया, छोटा सा कोई बच्चा बीमार पड़ा लोग टेंशन में आ जाते थे, कुछ छोटी सी चोरी हो गई नुकसान हुआ टेंशन में आते थे, दुख अशांत, खुद भी अशांत, सारा परिवार अशांत। लेकिन अभी हमें बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए ये ढाल यूज करो, कौन सी ढाल, याद रहता है ड्रामा, तो उस समय ड्रामा हमको याद रहना चाहिए। तो इतना बाबा ने विशेष ज्ञान हम बच्चों को, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम। तो जिनके पास ये सत्य ज्ञान है, जो सत्य ज्ञान को सिमरन करते हैं, उनके याद में सदा शिव है, और जिनके याद में शिव है उनका जीवन सुंदर है, इसलिए सत्यम शिवम। तो इस संगम युग की हम सभी विशेषता को अपने जीवन में लाना है और अपनी दिनचर्या अमृत बेले से लेकर रात को सोने तक विधिवत, जैसे बाबा ने कहा है, श्रीमद सबको पता है भोजन कैसा करना है, भोजन बाबा की याद में बनाना है, ये सब बातें बाबा के मुरली में आती रहती है। तो श्रीमत अनुसार अपना जीवन श्रेष्ठ बनाएंगे और औरों का भी क्या करेंगे, बनाते रहेंगे और अपना सब कुछ तन मन धन ये बाबा के यज्ञ में कार्य में सफल करेंगे और सफलता मूर्त बनेंगे। ओम शांति, ओम शांति।